नमस्कार, मैं शिव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं नेशनल इंटरेस्ट के इस नए एपिसोड में। इस हफ्ते के नेशनल इंटरेस्ट में शिखर गुप्ता लिखते हैं कि कैसे केंद्र सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ ट्रिपल वेपन का यूज कर रही है और उसकी प्रतिक्रिया की वजह से कैसे देश में नया MAD का सिद्धांत उभर कर सामने आ रहा है। आज के स्कूली बच्चे काफी स्मार्ट है ना, खैर ना भी हों तो वे आपको बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में MAD सिद्धांत का क्या मतलब होता है। इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी आपसी तबाही की मुकम्मल सहमति। सामान्य शब्दों में समझना हो तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई देश अगर दूसरे देश पर एक परमाणु हथियार से हमला करता है तो उसका जवाब 3 परमाणु हथियारों के हमले से दिया जाएगा। चूंकि दोनों लड़ाकू देशों को पक्का विश्वास है कि दोनों तबाह हो जाएंगे, इसलिए वे शांति बनाए रखते हैं। यही है MAD का सिद्धांत। इसकी बदौलत बड़ी ताकतों में 75 साल से शांति कायम है। ये बात और है कि व्लादिमीर पुतिन अब आजमा रहे हैं कि इस संयम को कहां तक खींचा जा सकता है। लेकिन अब इसको जरा भारतीय राजनीति से इक्वेट करते हैं और देखते हैं कि यह MAD सिद्धांत भारतीय राजनीति में किस रूप में उभर रहा है। करीब 2 साल पहले इस स्तंभ में हमने बताया था कि मोदी शाह की भाजपा जिन्हें पसंद नहीं करती उनके खिलाफ वो 3 तरह के हथियारों से यानी कि ट्रिपल वेपन से आक्रमण की राजनीति को बहुत ही सफाई से लागू करती है। ये 3 तरह के हथियार हैं पुलिस, जांच या टैक्स एजेंसियां और ED यानी प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन सभी को हम एजेंसियां कह सकते हैं। दूसरा है फ्रेंडली TV चैनल और तीसरा है सोशल मीडिया पर जोरदार ऑपरेशन। अब देखिए कि इसका प्रयोग कैसे होता है। आपके कब्जे में कोई एजेंसी है तो कोई आरोप उछाल दीजिए, चाहे वो कितना भी मनमाना या काल्पनिक क्यों न हो। अब रावण की तरह 10 सिरों से बोलने वाले आपके फ्रेंडली TV चैनल प्राइम टाइम पर आरोपित व्यक्ति को बदनाम करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे और इसके बाद कम से कम 72 घंटे तक सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर और हैशटैग पर उसे चोर, कातिल, बलात्कारी, आतंकवादी, दाऊद का गुर्गा, ISI एजेंट, घूसखोर और न जाने क्या क्या घोषित किया जाता रहेगा। ये सब बहुत समय तक चलता रहा लेकिन अब नहीं चल पा रहा है। न हो तो ममता बनर्जी को देखिए, जिनके भतीजे और संभावित उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी मुश्किलों में घिरे हैं। या महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे को देखिए, जिन्हें इस 3 तरफा आक्रमण को तब झेलना पड़ा जब उनके बेटे और युवा मंत्री के खिलाफ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की साजिश में शामिल होने का मनमाना आरोप थोपा गया, क्योंकि वे किसी अभिनेत्री को लेकर राजपूत के साथ किसी काल्पनिक झगड़े में उलझे थे। भाजपा समर्थक प्राइम टाइम योद्धाओं और सोशल मीडिया ने लंबे समय तक ये मुहिम चलाई। यही नहीं, महाराष्ट्र में राज्य के 2 मंत्री तो कुछ समय से जेल में भी बंद हैं। आखिर ये सब बदलना ही था। ऐसा लगता है कि किसी ने गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को नींद से जगाकर याद दिलाया कि अगर केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन्हें धमका, डरा और कैद कर सकती है तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। आखिर संवैधानिक व्यवस्था कहती है कि कानून व्यवस्था का मामला राज्य सरकारों के नियंत्रण में होता है। सो जवाबी हमले की कार्रवाई 2 साल पहले धीरे धीरे शुरू हुई और अब यह एक शक्ल ले चुकी है और आगे और मजबूत होने वाली है, यानी पिक्चर अभी शुरू हुई है। अब ये कहना मुश्किल है कि इसका इल्हाम सबसे पहले किसे हुआ, लेकिन इस चाल के लिए पुराने खिलाड़ी शरद पवार को श्रेय दिया जा सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल ने कुछ हद तक प्रतिकार का संकेत तो पहले ही दिया था, मगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी MVA नामक गठबंधन ने ठोस जवाब देने की शुरुआत की। अगस्त 2020 में जब ये मनमाने ढंग से प्रचारित कर दिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल के कारण हुई है और जूनियर ठाकरे को उस साजिश में शामिल बता दिया गया, तब यह मामला CBI को सौंप दिया गया। 3 तरफा युद्ध का मुकम्मल रूप सामने आने लगा था। इस युद्ध की थल सेना, नौसेना, वायुसेना के रूप में कोई एक एजेंसी, तमाम दोस्ताना TV चैनल और सोशल मीडिया उस आंतरिक एकजुटता के साथ हमलावर हो रहे थे, जिस एकजुटता की अपनी सेनाओं में कमी आज पुतिन को यूक्रेन युद्ध में खल रही है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिकार के कुछ पहले संकेत यहां से उभरे। अपने कुछ युवा रिपोर्टरों मानसी फड़के, श्रेयसी डे, इशाद्रिता लाहिनी और रेवती कृष्णन की मदद से मैंने इस प्रतिकार का संक्षिप्त ब्यौरा तैयार किया है। इसकी शुरुआत हम महाराष्ट्र से कर रहे हैं। राजपूत की मौत के मामले को जब CBI को सौंप दिया गया तब राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच CBI से कराने की आम सहमति वापस ले ली। जल्दी ही दूसरे गैर भाजपा शासित राज्यों ने भी यही किया। एमवीए सरकार ने उस टीवी एंकर अर्णब गोस्वामी को सीधा निशाना बनाया जो राजपूत मामले में सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। उन्हें कई आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अंबानी के निवास एंटेलिया के मामले में केंद्र ने राज्य की पुलिस पर विफल होने का आरोप लगाकर उस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी। राज्य सरकार ने इसका जवाब दादर नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की मौत और उसमें भाजपा की भूमिका की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करके दिया। ये टकराव और तेज हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा फोन की निगरानी रखे जाने का आरोप लगाते हुए पोस्टिंग व तबादले में राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच की मांग की। राज्य सरकार ने शुक्ल पर अवैध फोन टैपिंग का आरोप लगाया। महीने के शुरू में राज्य पुलिस ने शुक्ल के खिलाफ 700 पेज का आरोप पत्र दर्ज किया। सीबीआई और ईडी ने जब एमवीए के मंत्रियों अनिल देशमुख और नवाब मलिक पर निशाना साधा तो राज्य पुलिस ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को कुछ दिनों तक जेल में डाल दिया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कथित रूप से उद्धव को थप्पड़ मारने की धमकी दी थी। कुछ दिनों बाद उनके विधायक बेटे नितेश को शिवसेना के एक सदस्य की शिकायत पर हत्या का एक मामला दायर कर दिया गया। सबसे ताजा मामला भाजपा समर्थक सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुख्यमंत्री के निवास के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी देने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए जाने का है। इस बीच महाराष्ट्र में शाहरुख खान के बेटे की बेमानी गिरफ्तारी और उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन यह प्रवृत्ति एक ही राज्य में सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल पर भी नजर डाल लेते हैं। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप दर्ज किया गया है कि उन्होंने भाटपाड़ा नैहाटी सहकारिता बैंक के अध्यक्ष के नाते फर्जी कामों के ठेके लिए और कर्ज जारी किए। सितंबर 2020 में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस विधायक सत्यजीत विश्वास की 2019 में हुई हत्या के मामले में भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार के खिलाफ आरोप दर्ज किया। बाद में एक पूरक आरोप पत्र में तत्कालीन भाजपा उपाध्यक्ष मुकुल राय को भी सहयोगी साजिशकर्ता बताकर आरोप दर्ज किया गया। सितंबर 2021 में राज्य सीआईडी ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हराया था, उनको अपने बॉडीगार्ड सुव्रत चक्रवर्ती की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी की शिकायत पर समन भेजा गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी कत्ल और 120B यानी साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे पहले भी हलचल हुई थी। मार्च 2018 की बात करें तो उस समय पश्चिम बंगाल पुलिस ने बच्चों की तस्करी के मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से पूछताछ करने के लिए गई थी। फरवरी 2019 में राज्य पुलिस ने सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया था। 5 अप्रैल 2021 को अभिषेक बनर्जी ने समाचार चैनल टाइम्स नाउ और ईडी के खिलाफ मामला दायर किया। उनका आरोप था कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है और पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को 3 बार इस मामले में इसके बाद समन भेजा। वहीं मई 2021 में कोलकाता पुलिस ने भाजपा नेता राकेश सिंह के खिलाफ कोकीन के मामले में आरोप दर्ज किया। एक और भाजपा पदाधिकारी पामेला गोस्वामी को ड्रग्स के मामले में जेल भेजा, जिन्हें 292 दिनों के बाद जमानत मिली। राजस्थान में कांग्रेस की नींद कुछ देर से टूटी जब अशोक गहलोत सरकार 2020 में दलबदल के कारण गिरने के कगार पर पहुंच गई थी। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने कांग्रेस विधायकों को दलबदल के लिए प्रलोभन देने के आरोप में भाजपा के 2 पदाधिकारियों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया। बाद में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी इसी तरह के आरोप दर्ज किए गए, हालांकि बाद में उन्हें वापस ले लिया गया। भाजपा के एक नेता जितेंद्र गोठवाल पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया, क्योंकि एक महिला डॉक्टर ने यह आरोप लगाते हुए आत्महत्या की थी कि उनके ऊपर एक मरीज की मौत का गलत आरोप लगाया गया था। अप्रैल 2022 में न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ कथित देशद्रोह और समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में FIR दर्ज किया गया। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी ऐसे ही मामलों के उदाहरण सामने आ रहे हैं। ताजा तरीन मामला पंजाब की आप सरकार का है, जिसने कांग्रेस नेता अलका लांबा, भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह और आप के बागी नेता और कवि कुमार विश्वास के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। ये जोर आजमाइश जब अपने चरम पर पहुंचेगी तब जाहिर है हमारा फुल मनोरंजन होगा। इसकी वजह यह भी है कि सभी राज्यों की पुलिस अपने FIR और आरोप पत्रों में मनगढ़ंत किस्से लिखने में माहिर है ही। पंजाब पुलिस की रचनात्मकता का मुकाबला तो शायद ही कोई पुलिस कर पाए। वहीं गैर भाजपा राज्य सरकारें अब उन्हीं मारक हथियारों का इस्तेमाल करने लगी हैं जिनका इस्तेमाल केंद्र सरकार उनके खिलाफ करती रही है। इसलिए MAD सिद्धांत भारत की संघीय राजनीति में विकास की ओर अग्रसर है। तुम हमारे एक आदमी को जेल भेजोगे तो हम तुम्हारे दो आदमियों को जेल भेजेंगे। ये भी एक तरह का MAD ही है, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिटेंशन। दूसरे शब्दों में कहें तो आपसी गिरफ्तारी को लेकर मुकम्मल सहमति। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नेशनल इंटरेस्ट के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।